نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير عرش الهي حقیقت اور تقاضے. آج ہمارا اس کی کلاس کا ڈے ٹو ہے. آج ہم پچھلے سیکھے ہوئے کو مزید پکا کرتے ہوئے جس بات سے آج کی اس کلاس کو شروع کر چکے وہ کیا تھی کہ آج کی دعا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. صبح کے وقت تین دفعہ یہ دعا مانگنا انسان کو اللہ کے نبی کی سنت سے پتہ چلتا ہے, اور یہ وہ سنت ہے جو آپ نے اپنی زوجہ کو بتائی, اور جو گھر والوں کو بات بتائی جاتی ہے وہ تو بڑی اہم ہوتی ہے, گو کہ اللہ کے نبی کی ہر بات اہم ہے. ترجمہ بھی بول دیتی ہوں, ہو سکتا ہے سننے والوں میں سے کسی کے لیے یہ بالکل نئی دعا ہو. تو سبحان اللہ ہی اللہ کی تعریف ہے, و بھی حمدی ہی اس کی تعریف کے ساتھ, سبحان اللہ ہی و بھی حمدی ہی عدد خلقی ہی یعنی جتنی اس کی مخلوق ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنے, مجھے اپنی سائنس کی بک میں پڑھا ہوا جملہ یاد آ رہا ہے کہ 1000 سپیشیز ہیں, اور پانی کے کتنی سپیشیز سمجھتے ہیں کس میں, جیسے جانوروں میں گھوڑا ایک سپیشی ہے اگر, تو شیر ایک دوسری ہے, تو گیدڑ تیسری ہوگا. اسی طرح سمندری جانور آج 1000 سے زائد قسم کے ڈسکور ہو رہے ہیں, اور وقت کے ساتھ تو یہ چیزیں اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمیں سامنے رکھ کے اس کو سوچنا ہے, عدد خلقی ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مخلوق اتنی بڑی اتنی زیادہ. پھر اس میں آپ سوچئے, دیکھیے دعائیں مانگنا نا کوئی پہاڑے پڑھنا نہیں ہوتا, بلکہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ اپنی زندگی کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دل کے جذبات ہوتے ہیں. الحمدللہ دور قرآن 2022 کے بعد تو بہت ساروں کا ہم میں سے دعاؤں کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. تو جب بھی کہیں عدد خلقی ہی تو ذہن میں اللہ کی مخلوق کو رکھیں. آج بھی دیکھیں لوگ اپنی بڑائی اور اپنی فوجوں کی بڑائی اور اپنے سبسکرائبرز کی بڑائی, اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, عدد خلقی ہی وہ ان ساری باتوں سے آزاد ہے. کوئی اس کو لائک کرے نہ کرے, کوئی اس کو سبسکرائب کرے نہ کرے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس کے اگلا لفظ کے عدد خلقی ہی ورضا نفسی ہی, اور جتنا اس نے اپنے آپ کے لیے خود پسند کیا ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے ان کی تعریف کی جائے, کچھ کو نہیں پسند ہوتا, اور ہمیں نہیں پسند ہونا چاہیے اپنی تعریف سننا کیونکہ ہم کس لائق ہیں. اللہ کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اور اللہ کو اچھا لگتا ہے بندہ جب اس کی تعریف کرتا ہے, کیونکہ اس میں بھی اصل میں توحید چھپی ہوئی ہے نا. اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے اللہ کے پیارے بنیں گے. تو رضا نفسی ہی وزنت عرشی ہی, اور اس کے عرش کے وزن کے برابر, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش اس کا وزن کتنا. اب ہم سوچنے بیٹھ جائیں یومنون بالغیب. دیکھیے بعض لوگ عرش کی تصویر کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ کیا بنا دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کرسی بنا دیتے ہیں, کوئی اسٹیج کی سیڑھیاں بنا دیتا ہے. کوئی چیز نہیں, لئی سکم اس لیے شیئن وہ سمیع العلیم. تو اس کا عرش کیسا ہے, وزینت عرشی, ہمیں نہیں پتا. ہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا عرش کتنا بھاری ہے, جو پچھلی کلاس میں ہم نے عرش کی ڈسکرپشن دیکھی, کرسی بڑی, یہ سب کچھ کر چکے ہیں نا, کرسی چھوٹی وہ بڑا وہ کیسے کیا ہے. تو ہم سب ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں وزینت عرشی ہی و مداد کلماتی ہی, اور تیرے کلمات تیسیا ہی, سمندروں کا پانی, دریاؤں کا پانی, چشموں کا پانی, یہ اگر سارا انک بن جائے, سیاہی بن جائے تو کیا ہوگا, ہم اس سے تیری تعریفیں لکھنا چاہیں گے. لیکن سورت کہف کے اینڈ پہ اور سورت لقمان کے اینڈ پہ اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ نہیں کر سکو گے, یعنی تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب کے کلمات کٹھے نہیں ہوں گے. تو آج ہم اس دعا کو سیکھنے کے بعد جو پہلی چیز کریں گے وہ ہے کچھ باتیں قیامت کی. حقیقت یہ کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے اس کو دیکھے سنے پڑھے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عرش کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیمپریچر باہر کتنا ہے, 40 ہے 50 ہے, تو آپ کو کیا لگے سائے کی ضرورت. ابھی بھی میں نے آتے ہوئے راستے میں سب جگہ کا ٹیمپریچر چیک کیا, میں فیل کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی جنتوں میں رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی 49-48 ٹیمپریچرز پاکستان میں چل رہے ہیں, اور باقی جگہوں پہ اس سے بھی کم زیادہ ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ذرا سا 10-12 سے اوپر جاتا ہے ہم کہتے ہیں گرمی ہے, 19 से ऊपर चला जाए तो और 20-22 तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कल का लाहौर का देख रही थी कि पूरे हफ्ते में मिनिमम, और आप कहते हैं ना मिनिमम मिड नाइट में होता है, रात ठंडी होती है मोमो या पो फूटने से पहले या बिल्कुल रात के अंदर, तो मिनिमम वहां जो था वो 30s था, 29, 30, 31, उससे ऊपर है बाकी सारा दिन। तो मैं सोच रही थी उनकी रातें भी कितनी गर्म है। तो पहली बात सूरत मुज़म्मिल आयत 17, यौम यजलुल विल्दान शीबा, क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा खौफ की वजह से और तवालत की वजह से। क़यामत के दिन की तकलीफें मुश्किलात बंदे को बूढ़ा कर देंगी। अपने लिए समझ लीजिए, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं फलां दुख ने तो बंदे को बूढ़ा कर दिया, कोई वक्त से बूढ़ा दिखे तो लोग कहते हैं गमों ने मार दिया, ये एक मुहावरा है, आगे इसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो दूसरी बात क़यामत के बारे में क्या है सूरत मोमिनून, के उस दिन लोगों के कलेजे मुंह को आ जाएंगे, वो गम से भरे हुए होंगे लेकिन कोई गम गुसार और सिफारशी मुयस्सर नहीं आएगा। दिल धक 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 करेंगे खौफ की वहशत की कैफियत को बयान करने के लिए। आज भी आप कहते हैं हलक में दिल आ गया, ये वही मुखाबरा है। कभी आप बहुत ही इस तनाव में हो ना तो आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है, वही बात इधर कही जा रही, गम से भरे होंगे, कोई दुख नहीं बांटने वाला, कोई सिफारशी नहीं, यहाँ कोई हमारे दुख सुख पे आए ना हमारे घर में, हम कहते हैं फला मर गया, फला आए ही नहीं ताजियत करने। अच्छा हमारे घर कोई फौत हुआ तो फला नहीं आया तो हम भी उनकी फला फौत होने पर नहीं जाएंगे। हालांकि आप देखिए कि दुनिया में लोग अगर आप भी जाएं और आपको मुझे कुछ कह भी दें तो क्या मिलेगा, सिर्फ तसल्ली। इंसान की तबीयत है ना कि उसको तसल्लियां अच्छी लगती हैं और वो अपने आप को मजबूत महसूस करता है जब उसके प्यारों में से कोई आकर उसके दुख सुख को बांट लेता है। क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। यहाँ दिल पे हाथ रखते हुए अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को जहन में लाइए। सबसे ज्यादा हमारी एज में तो जहन शौहर की तरफ जाता है, और ज़रा उम्र बड़ी हो जाएगी तो बच्चे जवान हो जाएंगे तो वो याद आ जाएंगे। हमारी एज से 10-15 साल पीछे ले जाइए तो माँ बाप, फिर और थोड़ा सा पीछे जाएं तो भाई बहन, इसी तरह हमारे संगी साथी। सारी ज़िंदगी हम लोगों के बीच में खोए रहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं कोई तुम्हारा दुख सुख बिठाने वाला नहीं होगा। आज दुनिया में लोगों के बीच में रहकर रब को नाराज़ मत करो। आज हम कई दफा अपने प्यारों को नाराज ना करने के डर से अल्लाह को नाराज कर देते हैं। क़यामत का दिन इससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ दिन होगा, तो लिहाजा उस दिन के लिए आज कुछ तैयारियां करके जा सके तो चले जाएंगे। तीसरी बात नोट कीजिए, सूरत मारिज की आयत 11-15 से पता चलती है, उस रोज के अजाब से बचने के लिए मुजरिम चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने खानदान को जो उसका सहारा थे, हत्ता कि रुए जमीन की हर चीज को फिदिये में दे दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। यफ्तदी मिन अजाबी यौम इज़िम बी बनी व साहिबती ही व अखी, फिदिया में दिया जाए लेकिन ये कहा जाएगा कल्ला, हम नहीं एक्सेप्ट करते। एक नोट जब एक्सपायर हो जाता है तो एक्सेप्टेबल नहीं रहता, एक टिकट जब पोस्ट ऑफिस उसको डिनाई कर दे तो वो दोबारा नहीं चलता। ये सब रिश्ते आज दुनिया में हैं, इनको लगाकर अपनी और इनकी आखिरत बना लीजिए। कल क़यामत के दिन ये सारे खोटे सिक्के करार दिए जाएंगे और आप उस दिन के सामने चीज़ों को रख कर देखेंगे कि आज ही हमें इस चीज़ का यकीन अगर आ जाए कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है तो इनकी और हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। अगली बात क़यामत के बारे में सूरत क़यामत से ही पता चलती है, आयत 6-11, इस रोज़ दीदे पथरा जाएंगे, आंखें यानी वो जो पुतलियां हैं ना चढ़ जाएंगी ऊपर, आंखों की स्याही खत्म हो जाएगी और सफेद हिस्सा सारी आंख पे छा जाएगा, यानी उस दिन दीदे पथरा जाएंगे, चांद गहना जाएगा, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे और इंसान कहेगा कहाँ भाग के जाऊं, लेकिन उस रोज कोई जाय पनाह नहीं मिलेगी। जरा सा सोचिए, आज दुनिया में हमें पता चल जाए कि हमारी आंखें खत्म हो जाएंगी। वखसफल कमर वजूमी अशम्स वल कमर यकूल उल इंसान यौम इज़िन, कहाँ भागूं, कल्ला ला वजर। नेवर, कोई आड़ नहीं, कोई दीवार नहीं कि जिसकी छांव में तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें कयामत के दिन की गर्मी और हिद्दत और शिद्दत महसूस ना हो। जरा से इसको इमेजिन कीजिए। और उसके बाद फिर अगली बात कयामत के दिन जो होने वाली है, सूरह फुरकान की आयत 28-29 से पता चलती है। और वो क्या कि उस रोज जालिम, यानी जिसने जिंदगी में शिर्क के जुल्म से लेकर इंसानों तक का जुल्म कमाया, क्योंकि इन शिर्क ल जुल्म नजीम, खालिक के मामले में शिर्क जो है वो जुल्म है, बल्कि जुल्म अकबर है। और मखलूक के साथ उनके हकूक और मामलात ना चलाना, ये मखलूक के साथ जुल्म होगा। उस दिन यकूलु ज़ालिमु या लैतनी, काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता, हाय मेरी बदबख्ती, मैंने फला आदमी को अपना दोस्त न बनाया होता। याद आए थे आप सबको, कुरान को पकड़ कर भी छोड़ना, यकूलु ज़ालिमु, और अपने हाथों को चबाते हुए ये लफ्ज़ कहेगा, ये क़यामत का दिन है, ये कोई खेल नहीं है। क़यामत, क़यामत किसी हीरोइन का नाम नहीं है जिसको आप कहे क्या क़यामत लग रही हो। क़यामत किसी नावल का नाम नहीं जिसके बारे में दोस्तें पूछती हैं, तुमने पढ़ा क़यामत नावल? हाय क़यामत आ गई, ये वो क़यामत नहीं है कि मासी ना आए तो आप कहते हैं आज तो क़यामत ही आ गई, मुझ पे सफाई खुद करनी पड़ेगी। क़यामत एक बहुत बड़ी हकीकत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत सही मुस्लिम में मिलती है, लोग अपनी कब्रों से नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठाए जाएंगे, यानी जिस हाल में बच्चा दुनिया में आता है। हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं? जेन में तो बाहया औरतों के यही आता है ना कि जब हम बाहर बन ठन के निकलेंगे तो हमें लोग देखेंगे नहीं, और यहां तो बात ही लिबास न होने की है। आपने फरमाया, इस रोज की मुसीबत इतनी ज्यादा होगी कि किसी शख्स को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। आज आप देखिए कि हम बन ठन के निकलते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, अपने प्यारों को मिलने जाते हैं, कभी हमने सोचा गाड़ी से निकलकर उस जगह जाकर बैठने तक कितने मर्द मुझे देखेंगे? और जिस हाल हुलिये में आपको अंदर दिखना चाहिए था, सिर्फ गाड़ी से हॉल के अंदर आने के चलिए को 50 फीट ही होंगे ना, 50 स्टेप्स ही उठाते होंगे ना, कितनों की नजरें आप पे पड़ी। जरा सोचिए कि आयशा सिद्दीका के साथ आपको मुझे कोई निस्बत हो सकती है? रम कहते हमें कौन देख रहा है, तो ये आपने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया हुआ है? घंटा लगाकर तो आप शीशे को तोड़ते तोड़ते बची, और जो कपड़े इस्त्री करने से लेके बल्कि पीछे ले जाऊं तो सिलवाने, खरीदने, बनाने, पैसे देने, शिप करके इधर हजारों मंगवाने के बाद आपने ये किस लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कि खुदा के लिए मुझे देखो? तो दिखाइए खुद को, अपने प्यारों को दिखाइए, प्यारियों को दिखाइए, ये दूसरों के प्यारों को दिखाने की क्या जरूरत है? कभी सोचा आपने, आपकी बीवी है कोई क्यों देखे, आपकी बहू को कोई देखे? हया पार पारा हो जाए, चूंकि वही बात है कि जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। मैंने देखा है कि आज हम जिसको अपनी सेलिब्रेशंस कहते हैं ना, खुशियां, चाओ, लाट, अच्छे होते हैं, हक है, वो दूसरे लफ्जों में गुनाहों की लिस्टें लंबी करना, बच जाएंगे तो जान नहीं छूट जाएगी। आप जिसको पंजाबी उर्दू में हमारे बचपन से एक जुमला सुनते आए कि गुना बेलज्जत, ऐसा गुना जिसमें आपको लज्जत कोई नहीं मिलनी, ये आज हमारे फंक्शन वो गुना बन चुके हैं। लज्जतें दूसरे ले जाते हैं और उनके गुनाहों में हम शरीक होंगे। अपना गुना ही बहुत है हमारे लिए, हम दूसरों के गुनाहों का पटारा सर पे क्यों रखते हैं? क्यामत का दिन बड़ी शदीद रुसवाइयों और शर्मिंदगियों का दिन होगा। और अगली बात लिखिए, 3 हदीसें दे देती हूँ, काफ़ी हैं इतनी, बाकी फिर आप कभी इंशाल्लाह लें। और इस मौजू पे पूरी सीरीज है हमारे पास, क़यामत का बयान एक किताब है जिसके अंदर एक एक स्टेप बताया गया है, कुर्बे क़यामत की अलामतें भी हैं और बहुत कुछ है। लेकिन इस वक्त आपके लिए क्या है, इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी तकलीफें इंसान पर आती हैं, सोचिए ज़रा, पैदाइश ही एक तकलीफ है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फिर वो बच्चा जब दूध पीने लगता है तो रोता है, लड़का है तो उसके खतने होते हैं तो वो रात रोते रोते गुजर जाती है, फिर जब दांत निकलते हैं तो तकलीफ, टीथर की तकलीफ, फिर बच्चे के जब मसूड़े निकलते हैं तो तकलीफ है, फिर दूध पीते के दौरान जो माँ को तकलीफ है, एक एक तकलीफ पैदाए से लेके आखिर में जिंदगी की। तो वो कहते हैं ना कि एक गम से निकले तो दूसरा, ये जो मौत के वक्त तकलीफ है, निजात की तकलीफ है, पैदा होने से लेकर मौत तक जितनी भी तकलीफें किसी इंसान पर आती हैं, मौत की तकलीफ इन सब से ज्यादा है। मौत के वक्त बंदे को लगता है मेरी जिंदगी फूलों की सेज थी। अब आपके दिल में सवाल आ सकता है कि मोमिन या काफिर या मुनाफिक सबके लिए, ये अल्लाह पे है। वह नाजियाती गर्का व नाशिताती नश्ता, अल्लाह ने इसमें दोनों बातें बता दी। अमूमी असूल तो यह है कि काफिर की मौत बड़ी तकलीफ से आती है, मोमिन की राहत से आती है। लेकिन अगर मोमिन के जिस्म पर कोई गुनाह हो, नंबर एक, अल्लाह जिनको दुनिया में धोना चाहता है ताकि मेरे बंदे को वहां तकलीफ ना आए, तो मौत के वक्त तकलीफ आती है, एक वजह। दूसरी बात है कि गुनाह तो नहीं, रफाए दरजात मतलूब है। अल्लाह उस बंदे को आखिरत में वो देना चाहता है जहां बंदा अपने आमाल से नहीं पहुंच सकता या नहीं पहुंच सका सारी जिंदगी, तो निजा की सख्ती आती है। अंबिया कराम की तकलीफ इस पे थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मेरे अब्बा को दो लोगों जितना बुखार था। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह के नबी की निजा को देखकर मैं अब नहीं कह सकती कि निजा की सख्ती है, ये कोई गुनाहगारों पे आती है। आपको बहुत तकलीफ थी, क्यों? बाबा सुमकाम महमूदा, और वसीला देना था अल्लाह ने। जन्नत के वाला मुकाम अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को देने थे तो उसके लिए मौत की सख्तियों से निकाला। हमारे तो गुनाह ही धुल जाएं तो बड़ी बात है। अल्लाह हमें बचा कर रखे परेशानियों से और तकलीफों से बचाए। और एक और हदीस ले लीजिएगा, सही मुस्लिम ही की ये रिवायत है। मैदाने हशर में खुद को वहां एज्यूम कीजिए, मैदाने महशर में जहां लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे, सूरज एक मील के फासले पर ले आया जाएगा। लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक। और यही बात थोड़ी बढ़ाकर सही बुखारी के अल्फाज में आती है कि हशर का दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। आपकी 50 साल जिंदगी के 1,000 गुना बड़ा दिन कयामत का दिन होगा। और लोगों को हशर में इतनी तकलीफ और परेशानी होगी जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का असूल दुनिया में क्या? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तकलीफ से ज्यादा नहीं आजमाता। आखरत में उस दिन हिम्मत भी टूट जाएगी, ताकत भी खत्म हो जाएगी, बर्दाश्त भी खत्म हो जाएगी। और एक आदमी को पसीने की लगाम आई होगी और वो दुआ मांगेगा, या रब्बी इस मुसीबत से मुझे निजात दे, ख्वा जहन्नुम में ही भेज दे। ये आखिरी जुमले जो ना, ये तबरानी के हैं कि यहां से मेरी जान छुटे। और फिर जब पुल सरात रखा जाएगा जहन्नम के ऊपर, तारीकी होगी, लोगों को पुल सरात से गुजरने का हुक्म दिया जाएगा जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। इस वक्त तमाम अंबिया भी अल्लाह ताला से अपनी अपनी आफियत मांगेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। तो ये चंद बातें कियामत से मुतल्लिक थी। आप इन आयात और अहादीस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मरने के बाद पेश आने वाले मराहिल इस कदर कठिन और इतने तकलीफ दे होंगे जिनके बारे में ना आप सुन सकते हैं, ना मैं बात कर सकती हूं, और ना लिखने वाले लिख सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को देखें, हम उसके लिए कितने तैयार हैं। ये कोई फन एंड फ्रॉलिक नहीं है, ये कोई स्टेज शो नहीं है जिसके लिए सेट लगाया जाएगा तो किया जाएगा। ये एक जलजला है, जलजला कयामत। अगर ये लफ्ज हमारे होश गुम ना करें तो हम फिर कहाँ जाएंगे? आप अपने आप को जहनी तौर पर इस जगह पर रखिए, कितना सुकून है, कितनी सहूलत में बैठे हुए हैं, और एकदम जलजला आ जाए तो क्या होगा? सब भूल जाएगा। वही एक बाप जो बच्चों को जंगल में लेकर जाए और उसको वहां छोटी छोटी चींटियां नजर आए, और उसको खौफ आ रहा है कि मेरे बच्चे के पाँव पे चूहे और चींटियां और ये चूंटे ना चढ़ जाएं। इतने में दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज आए। क्या इस मंजर को देखने के बाद इसके मुंह से चीख नहीं निकलेगी? वो बेसाख्ता पुकार नहीं उठेगा कि बचाओ बचाओ बच्चों भागो, शेर शेर शेर। उस वक्त बच्चे के अब्बू वो चींटी, अब्बू वो चूंटा, तो उसको चींटे चींटियां याद आएंगे, सारा बाग उसके लिए शेर बन जाएगा। इसके सिवा उसके लिए कोई और बड़ा मसला नहीं होगा कि इस शेर से खुद को और अपने बच्चों को बचाए। आज हम दुनिया में रहते हैं, आज हैं जिंदा, शुक्र कीजिए, स्टिल वी आर अलाइव। इसमें भी बहुत से मसाइल हैं, वैसे ही जैसे बाग में कीड़े और चींटे। मगर इन्हीं के बीच में एक सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है शेर की तरह, और यह है आखिरत का मसला, जिस जलजला कियामत का मसला। अगर हम इसको जान ले तो हम को पूरी कायनात में आखिरत के सिवा कोई दूसरी चीज दिखाई ना दे। इसके बाद हम आखिरत के लिए पुकारेंगे, ना कि कीड़ों और चींटियों के लिए। आज 98% इंसानियत अपने और अपने बच्चों के दुनियावी मसाइल की वजह से अपसेट है, परेशान है। एक कमाता था तो भी गुजारा नहीं होता था, फिर घर के दो लोग कमाने लगे फिर भी ना हुआ, तब भी रोते थे जब एक कमाने वाला था। कई औरतें बकायदा रोने के रंग में कहती, मेरे एक ही हस्बैंड है जो कमाते हैं और हम सब खाते हैं, तो सबका एक ही होता है, शुक्र कीजिए एक ही हो। हमने तो कभी ये मसला नहीं पूछा कि एक के कमाने से बारिये, ये बोली बोलते हैं हम इस माशरे की। एक कमाने वाला, चार बच्चे, बीवी बच्चों और पीछे भी भेजना पड़ता है, और जब बेगम भी निकली तो कोई रोना कम हुआ, बढ़ गया, क्योंकि बेगम के घर में रहने से 10,000 भी बचे हुए थे। जब वो बाहर गई तो उनको भी फोन चाहिए था, उनको भी गाड़ी चाहिए था, उनको भी पेट्रोल चाहिए था। आज आप देखिए कि इंसानियत, आप नॉर्वे जैसे अमीर मुल्क में अक्सर ये बातें नहीं सुनते, महंगाई हो गई। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद प्राइसेस में मोर देन 25% इजाफा हुआ है। 8 वाली चीज इस वक्त 12 की है, 20 वाली चीज इस वक्त 25-30 की है, लेकिन चूंकि यहां महसूस नहीं होता, सड़कों पे लोग नहीं आते। हमारे मुल्कों में 20-30 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, तो उसके ऊपर कितना इशू आता है। कल मेरी नजरों से किसी का आर्टिकल गुजरा जिसमें उन्होंने अपने मुल्कों में लोगों को तैयार किया था कि आने वाले वक्तों में बहुत कुछ होने वाला है, और बिजली महंगी और हो रही, पेट्रोल हो रहा, और उन्होंने टिप्स लिखी। मेरा दिल तो कह रहा है मैं आपको भी सुनाऊं, बात सच है जो कुछ उन्होंने लिखा है ना, इतनी बड़ी हकीकत है, लेकिन वो जिस तनाजर में लिखा है कि हमारे मुल्कों में महंगाई हो रही है और आगे जाके ये भी इतना होना है, तो यही था कि पंखे कम इस्तेमाल करें, बाहर का खाना कम खाएं, और पानी की बोतलें बाहर से मत खरीदें, यानी अपने खर्चों को कट डाउन कीजिए। घर में अगर 2-3 लोगों ने जाना है तो एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें, जो कि बहुत अच्छी होती है। रात को अपने डिस्पेंसर्स बंद कर दीजिए, फ्रीजरों में ज्यादा खाना ना भरें, ये बिजली लेता है। एक्सीलेंट एडवाइस थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये महंगाई के खौफ पे वही लोग बेचारे इस पे चलेंगे ना, जिसको आप कह सकते हैं कि जिनकी तनख्वाह पूरी पूरी है, जो 20-25-30 और इस तरह के 1,000 में जीते हैं, तो जिनके पास लाखों करोड़ है उनको क्या लगे, उनकी बत्तियां ऐसे ही जलनी है, उनके सारे कहानियां, उनकी सारी जिंदगी के लिले तलीले उसी में चलने हैं। काश ये सारी बातें तरबियत औलाद में होती तो हमारे बच्चे ठीक होते। ये तो नहीं है कि आपके पास रिस्क थोड़ा है तो आप संभाल के खाएं पिएं, असल बात यह है कि अगर रिस्क ज्यादा भी है तो फिर तो जरूरी उसकी केयर करें, सच है कि नहीं है। तो बहरहाल ये बातें हमें समझ आएंगी कयामत के दिन। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे जरूर ही जरूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तो कयामत का दिन आपकी मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा सख्त दिन है। अगर हमें उस दिन की फिक्र लग जाए तो दुनिया में हमारा सबसे बड़ा मसला आखरत का मसला हो, हमारे बच्चों की आखरत बन जाए, हमारे शोहरों की आखरत खराब ना हो, हमारे भाई बहन आखरत में सुरखरू हो जाएं। और याद रखिए, ये फिक्रे आखरत, जलजला कियामत, वो पैगाम था जो देने के लिए अंबिया कराम आए थे। हर नबी की दावत का बुनियादी उनसर तौहीद, और उसका सेकंड पार्ट क्या था, وانذرهم يوم العازفة إذ القلوب لدى الحناجر. سورة مومن کی آیت 89. کہ اس آنے والے دن سے ان کو ڈرا دیجئے جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. اس وقت اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو کیا فائدہ, بات تو آج سمجھنے کی تھی. تو کیا پتہ چلا قیامت کوئی چھوٹا موٹا زلزلہ نہیں ہے. قیامت نے جب آنا ہے تو لگ بتا جانا ہے. دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے, دجال کا فتنہ. اگر آپ ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آخرت کے مسئلے فتنہ دجال سے بھی بڑے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتا ہو. اور اللہ کے نبی پر کروڑوں درود و سلام اور رحمت جنہوں نے ہمیں ایک ایک سٹیپ آنکھوں دیکھا حال کی طرح بتا دیا. میں آپ کے ساتھ ایک فلو چارٹ کی روشنی میں قیامت کے دن کے مختلف سٹیپس رکھنا چاہوں گی, کس امید اور کس سوچ کے ساتھ, تاکہ آپ عرش کی اہمیت سمجھیں, عرش کب کہاں اس کی کیا ضرورت ہوگی. تو قیامت کا دن جو آئے گا بھی اچانک, وقت بھی نہیں بتایا. ہم کہتے ہیں مہمانوں کے آنے کا وقت پتہ لگ جائے نا تو تیاری اچھی ہوتی ہے.